हेडिंग है स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति के लिए उत्तरदायी कारण। पृष्ठ संख्या 46। ऊपर निर्दिष्ट किया गया है कि भारतवर्ष में वैदिक काल से पुनर्जागरण काल तक स्त्रियों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति में निरंतर गिरावट पाई जाती है। यहाँ संक्षेप में स्त्रियों की स्थिति के गिरने के कारणों का विश्लेषण अप्रासंगिक नहीं समझा जाएगा। पहला, नारी शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक काल में नारी शिक्षा का प्रचलन था, जिसे पूर्ववर्ती पृष्ठों में रेखांकित किया गया है। तथापि यह प्रचलन संभवतया उच्च वर्गीय या आभिजात्य वर्गीय महिलाओं तक ही सीमित होगा, परंतु बाद में स्त्रियों का कार्य क्षेत्र क्रमशः संकुचित होते होते केवल गृह कार्य तथा संतानोत्पत्ति तक ही सीमित रह गया। फलतः उनकी शिक्षा को उपेक्षणीय समझा गया। प्रेमचंद्र के सेवा सदन तथा निर्मला की नायिकाओं क्रमशः सुमन एवं निर्मला की अवदशा के पीछे उनकी सीमित शिक्षा ही उत्तरदायी है। यदि वे पूर्णतया शिक्षित होती तो दहेज न जुटा पाने की स्थिति में भी 13 कोटा ब्रैकेट में लक्ष्मीकांत वर्मा की मीति तथा 55 खंभे लाल दीवारें ब्रैकेट में उषा प्रियंवदा की सुषमा तथा मुझे चांद चाहिए ब्रैकेट में सुरेंद्र वर्मा की वर्षा की भांति सम्मानित जीवन बिता सकती। दूसरा, कन्यादान का आदर्श। हिंदू विवाह पद्धति में कन्यादान के महत्व ने भी क्रमशः नारियों की स्थिति को दयनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दान चीज वस्तुओं का, रुपयों का, गायों का दिया जाता है। अतः कन्यादान की विभावना ने स्त्री को भी व्यक्ति के स्थान पर चीज वस्तु की कोटि में रख दिया। कन्याओं के लिए गुजराती में एक कहावत है, पृष्ठ संख्या 47 ब्रैकेट में, दिकरी ने गाय देरो त्या जाए, अर्थात पुत्री और गाय जहाँ उन्हें ले जाया जाता है चली जाती है। दूसरी, इस विभावना के कारण एक और मनोवृत्ति ने जन्म लिया कि कन्यादान के पश्चात माँ बाप के कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। फिर वर पक्ष के लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसकी चिंता कन्या पक्ष वाले नहीं करते। इसको महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने एक नए सूत्र की खोज की है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, माँ बाप के घर से पुत्री की डोली उठती है और पति के घर से उसकी अर्थी। प्रेमचंद इस प्रथा के विरोधी थे। उन्हें पसंद नहीं था कि कन्या का दान किया जाए। शिवरानी देवी ने उनकी पुत्री के विवाह के प्रसंग को लेकर इस संदर्भ में प्रेमचंद घर में नामक पुस्तक में टिप्पणी दी है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मैं ब्रैकेट में शिवरानी देवी बोली, अभी कन्या दान तो आपको करना ही होगा। आप बोले, कन्या दान कैसा? बेजान चीज दान में दी जाती है। जानदार चीजों में तो गौ ही दी जा सकती है, फिर लड़की का दान कैसा? यह मुझे पसंद नहीं। आखिर किसी तरह मंडप में आए और मैंने ही ब्रैकेट में शिवरानी देवी ने कन्या दान किया, वे बैठे रहे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद घर में पृष्ठ संख्या 105। तीसरा, बाल विवाह। वैदिक काल में वयस्क होने पर लड़के लड़कियों के विवाह होते थे, परंतु स्मृतिकार बाल विवाह के पक्ष में थे। परिणाम यह हुआ कि लड़कियों के विवाह संस्कार ही उनके उपनयन संस्कार हो गए। बाल विवाह की स्थिति में लड़की का उचित मानसिक विकास भी संभव नहीं है। बहुत छोटी अवस्था में उसे ब्याह दिया जाता है और यही शिक्षा दी जाती है कि वह अपने पति की दासी है और उसकी सेवा करना ही उसका धर्म है। बाल विवाह का असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता था और बहुत सी स्त्रियां असमय ही मृत्यु का शिकार हो जाती थीं। उनका स्थान नई कमसिन लड़कियां ले लेती थीं। इस प्रकार यह दोहरा शोषण चलता रहता था। बालिकाओं के विवाह प्रौढ़ और वृद्धों से भी होते थे और फलतः उन्हें असमय वैधव्य का शिकार होना पड़ता था। चौथा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। कई बार हमारे प्राचीन शब्द ही हमारी प्राचीन सभ्यता और इतिहास का दिग्दर्शन कराते हैं। हमारे यहाँ पत्नी के लिए भार्या तथा पति के लिए भर्ता शब्द का प्रयोग प्रचलित है। इस भर्ता शब्द से ही भर्तार या भर्थार शब्द निर्मित हुआ है। इन शब्दों से यह प्रमाणित होता है कि स्त्रियां पूर्णतया पुरुषों पर निर्भर रहती थीं। आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। यद्यपि प्रातः काल से लेकर रात को सोते समय तक वे घर के अनेक छोटे मोटे श्रम साध्य कामों में खटती थी, तथापि इन कार्यों को गृह संचालन के कार्य मानते हुए तथा उनसे आर्थिक उत्पादन न होने के सबब उनकी उपेक्षा होती थी। कमाने वालों की कोटि में पुरुषों की ही गणना होती थी, अतः अच्छा पति और परिवार मिले तो उसका जीवन सुखपूर्वक कट जाता था। परंतु विपरीत स्थितियों में सिवाय भाग्य को कोसने के उनके पास कोई चारा नहीं रहता था। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यह स्थिति अभिजात्य वर्गीय स्त्रियों की थी। निम्न वर्ग की स्त्रियाँ तो आर्थिक उत्पादन के कार्यों में बराबर लगी रहती थी, अतः उनका उस प्रकार का शोषण नहीं होता था। प्रेमचंद की सुभागी नामक कहानी में इस तथ्य को भली भांति रेखांकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 48। पांचवा, संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार प्रणाली ने भी स्त्रियों की स्थिति को गिराने में बहुत बड़ा योग दिया है। डॉक्टर के एम पन्निकर ने तो स्त्रियों की निम्न स्थिति के लिए संयुक्त परिवार प्रथा को ही उत्तरदायी माना है। ऐसे परिवार में कर्ता पितृसत्ता के पास ही सारे अधिकार केंद्रित होते थे। इस प्रथा में स्त्रियों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती थी, उन्हें तो परिवार के पुरुषों की कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। एक प्रकार से संयुक्त परिवारों में स्त्रियों की स्थिति आश्रिताओं या सेविकाओं की थी। हाँ, स्त्रियों के वयोवृद्ध होने पर उसे कुछ सम्मान जरूर मिलता था, परंतु वहाँ भी यह गैर बराबरी तो थी ही कि वृद्ध पुरुष की तुलना में वृद्ध स्त्री को कम सम्मान का अधिकारी समझा जाता था। घर में बड़े बड़े बहु बेटे हो और सिर पर पति का छत्र हो तब तो ठीक, परंतु उस छत्र के उठ जाने पर वृद्ध स्त्रियों की भी कई बार बड़ी दुर्दशा होती थी। प्रेमचंद की बेटों वाली विधवा कहानी में हम इस तथ्य को दृष्टिगत कर सकते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार में नारी चेतना को कुंद करने वाली स्थितियां विद्यमान थी। आज भी बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों के लिए छोटे परिवार या विभक्त परिवार पसंद करते हैं, यह अकारण नहीं है। छठवां, वैवाहिक कुरीतियां। प्रायः सभी समाजों में शास्त्रों के रचयिता पुरुष ही रहे, अतः उन्होंने स्वयं को केंद्र में रखते हुए अपनी सुविधा अनुसार विवाह इत्यादि के नियम बनाए, जिसके कारण अनेकानेक वैवाहिक कुरीतियों का उद्भव हुआ। इन वैवाहिक कुरीतियों में कुलीन विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह पर प्रतिबंध, दहेज प्रथा, पारस्परिक विवाह इत्यादि है। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार हिंदू स्त्रियों की निम्न स्थिति के लिए मुख्यतया कुलीन विवाह प्रथा ही उत्तरदायी है। इस प्रथा के अनुसार लड़कियों का विवाह अपने बराबर या ऊंची स्थिति वाले कुलीन समूहों में किया जाता था। यहाँ लड़की के लिए योग्य वर नहीं अपितु ऊंचा खानदान देखा जाता था, और इस प्रकार ऊंचे कुल या खानदान के फेरे में पड़कर लड़कियों को कई बार कुपात्रों के गले मर दिया जाता था। इस प्रकार अनमेल विवाह के मूल में यही प्रथा थी। दूसरे, ऊंचे कुल या खानदान की झूठी शान के कारण ऊंचे कुल के लड़कों की मांग बढ़ जाने से दहेज की रकम या चीजों में अधिकाधिक वृद्धि होती जाती थी। गुजरात में खेड़ा जिले के अमीन पटेल कुलीन समझे जाते हैं, अतः उनमें दहेज खूब ज्यादा होता है। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की सुमन तथा वरदान की विरजन इसी कुलीनता के चक्कर में क्रमशः गजाधर और कमलाचरण जैसे अपात्रों के हाथ लग गई है। बिहार में मैथिल प्रदेश में इस विवाह का एक दूसरा ही अर्थ होता है। वहाँ पर बहुत से गरीब किंतु उच्च वर्गीय ब्राह्मण तिलक की रकम के अभाव में किसी कुलीन या क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ लड़की का विवाह कर देते हैं। एक एक कुलीन ब्राह्मण कई कई लड़कियों से विवाह करता है और वहाँ फिर लड़की विदा होकर ससुराल नहीं जाती अपितु पितृगृह में रहती है। जमाता महोदय अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब ससुर गृह में रह सकते हैं। इस प्रथा के कारण स्त्रियों के नैतिक जीवन में भ्रष्टाचार पनपने की पूरी संभावना रहती है। डॉक्टर भगवती चरण मिश्र के उपन्यास नदी नहीं मूर्ति में इस प्रथा का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। इसी प्रकार उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में घट विवाह की प्रथा है, जिसमें दरिद्रावस्था के कारण लाचार माँ बाप अपनी विवाह योग्य पुत्री का विवाह पृष्ठ संख्या 49 तांबे के घड़े से कर देते हैं। उसी प्रकार आंतरिक विवाह में लड़के लड़कियों की शादी केवल अपनी जाति बिरादरी या समुदाय में ही होती है, जिसके कारण जीवन साथी के चुनाव का क्षेत्र काफी सीमित हो जाता है। पारस्परिक विवाह में दो परिवारों के लड़के लड़कियों के विवाह में अदला बदली चलती है, अर्थात वहाँ लड़का जिस परिवार से लड़की लाता है उसमें अपनी बहन, भतीजी या भांजी देता है। यहाँ पर तो जीवन साथी के चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। और दूसरा भय स्थान यह कि यदि एक दंपत्ति के दाम्पत्य में विवाद खड़े होते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे दंपत्ति पर भी पड़ता है और विवाह विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। गुजरात की कुछ निम्न वर्गीय जातियों में यह रिवाज प्रचलित है, उसे साटा पद्धति कहा जाता है। हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक उच्च वर्गीय लोगों में विधवा विवाह पर प्रतिबंध था, अभी भी उसे सम्मान पूर्वक तो नहीं ही देखा जाता। विधवाओं पर कई प्रकार की निर्योग्यताएं आरोपित की जाती है। शुभ और मांगलिक प्रसंगों पर उनकी उपस्थिति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। प्रेमचंद जी की धिक्कार नामक कहानी में मानी नामक बाल विधवा के साथ उसके सगे चाचा चाची अमानवीय व्यवहार करते हैं कि एक समय मानी आत्महत्या का असफल प्रयास करती है। ऐसी स्त्रियों से घर की नौकरानी सा व्यवहार किया जाता है, कई बार उनका लैंगिक शोषण भी होता है। पैराग्राफ 3, दहेज प्रथा तो हिंदू समाज के लिए कलंक है। उसके कारण अनेक अरमान भरी लड़कियों के सपने को आहुति दी जाती है। पूर्ववर्ती पृष्ठों में उसका विस्तृत वर्णन आया है। दहेज के कारण ही बहुतेरी बुराइयां पनपती हैं। अनमेर विवाह, वृद्ध विवाह, दुहाजू तिहाजू विवाह, कुलीन विवाह, घट विवाह जैसी नारी जीवन को अपमानित करने वाली प्रथाओं के मूल में दहेज प्रथा ही होती है। सरकार ने तो कानून बना दिया है, दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध है, परंतु जब तक इस पर सामाजिक सहमति स्थापित नहीं होती तब तक ऐसे कानूनों का कोई अर्थ नहीं। दहेज के कारण हमारे समाज में दहेज हत्याएं भी बढ़ रही है। दहेज की कमी के कारण या वर पक्ष वालों के लालची स्वभाव के कारण विवाह के उपरांत अनेक स्त्रियों के साथ अमानुषी अत्याचार होते हैं। इसके कारण अनेक सुधा गोयलों को जला दिया जाता है। 7, मुसलमानी आक्रमण। भारत में मुसलमानों के आक्रमण के कारण भी स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट आई। आक्रमणकारी बाहर से आए थे, अतः उनमें स्त्रियों की कमी थी, फलतः वे हिंदू स्त्रियों यहाँ तक कि विधवाओं से भी विवाह कर लेते थे। जो प्रभु सत्ता संपन्न थे वे तो अपनी सत्ता और शक्ति से स्त्रियों को उठवा लेते थे। इन कारणों से हिंदू धर्म की रक्षा हेतु ब्राह्मणों ने स्त्रियों के लिए निर्मित सामाजिक नियमों को अधिक कठोर बना दिया। बाल विवाहों को प्रोत्साहन मिला, विधवाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुसलमानों में विधवाओं से विवाह होता था, यह उसकी प्रतिक्रिया थी। मुसलमानों से अपनी स्त्रियों की रक्षा हेतु पर्दा प्रथा को लागू किया गया। सती प्रथा के रिवाज में बढ़ोतरी हुई। लड़कियों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लग जाने से उसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर भी पड़ा। पृष्ठ संख्या 50, 8, धार्मिक वैश्यावृत्ति। धार्मिक वैश्यावृत्ति शब्द ही किसी को विचित्र और चौंकाने वाला लग सकता है, परंतु यहाँ उससे अभिप्राय धर्म के नाम पर चलने वाली वैश्यावृत्ति से है। दक्षिण के कई मंदिरों में देवदासी प्रथा चलती है। प्रायः निम्न एवं दलित जाति की सुंदर कन्याओं को देवदासी बनाया जाता है, जिनका कार्य मंदिर तथा मंदिर से जुड़े हुए लोगों की सेवा करना होता था। इसके अंतर्गत शारीरिक समर्पण भी आ जाता है। आर के नारायणन कृत गाइड उपन्यास की नायिका की माता को देवदासी बताया है। सुप्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रही ने अभी थोड़े ही समय पूर्व जगन्नाथपुरी के मंदिर में देवदासी बनने की इच्छा प्रकट करके विवाद के टाइफून को जगाया था। वस्तुतः यह नारी प्रथा नारी चेतना एवं नारी अस्मिता के विरुद्ध पड़ती है। उत्तर भारत के कुछ मठों और अखाड़ों में सधुआइने रखी जाती हैं, जिनका प्रयोग भी धार्मिक वैश्यवृत्ति के लिए होता रहा है। शैलेश मटियानी के उपन्यास एक मूठ सरसों में एक दिगंबर बाबा का उल्लेख हुआ है, जो नई दीक्षित सधुआइनों के साथ रासलीला रचाते हैं। नागार्जुन के उपन्यास इमरतिया में जमनिया मठ के अंतर्गत लक्ष्मी, गौरी, माई इमरती दास जैसी साधुआइने हैं जिनका प्रयोग न्यस्त हित वाले लोक मठ के तथा अपने व्यक्तिगत हित के लिए करते हैं। इन व्यवस्थित तरीकों के उपरांत हमारे देश में धर्म के नाम पर अनेक धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में स्त्रियों का लैंगिक शोषण होता है, जिसका ताजा उदाहरण गुजरात के छोटा उदयपुर में रंग निकेतन आश्रम का है। कुछ वर्ष पूर्व गुजरात से ही द्वारका के केशवानंद का किस्सा प्रकाश में आया था, जिसमें वे धर्म की ओट में स्त्रियों के चरित्र से खेलते थे। नौवा, निम्न एवं दलित जाति की स्त्रियों का शोषण। नारी की भांति वैदिक काल के पश्चात शूद्र जाति के लोगों पर अनेक प्रकार की निर्योग्यताएं स्थापित की गई, जिनके कारण हिंदू समाज में उनका स्थान काफी नीचे चला गया। वे हर प्रकार से उच्च समाज पर निर्भर रहने लगे। उनको ऐसा व्यवसाय करने के लिए विवश किया गया जो मानवीय अस्मिता की दृष्टि से जघन्य और अपवित्र समझे जाते रहे हैं। यहाँ तक कि उनको अस्पृश्य करार दिया गया, परंतु दूसरी तरफ उनकी स्त्रियों के साथ यौन संबंध रखने में इन ऊंची जाति के लोगों को किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती। गोदान, मैला आंचल, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, धरती धन्ना अपना कब तक पुकारू जैसे उपन्यासों में हमें इस प्रवृत्ति को रेखांकित कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त कारणों से भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति निरंतर गिरती गई है। आधुनिक युग में कुछ एक सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण तथा बढ़ती हुई नारी शिक्षा के कारण सहराती स्त्रियों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है, परंतु भौतिकता के व्यामोह में नारियों के नैतिक शोषण का एक नया आयाम प्रस्फुटित हो रहा है, जिसमें नौकरी में ऊंचा पद, प्रतिष्ठा आदि के कारण नारी स्वयं यौन दृष्टया शोषित होने के लिए प्रस्तुत हो रही है। पंचतारक होटलों में कालगर्ल की जो प्रवृत्ति चलती है, उसके पीछे भी भौतिकता की अंधी अंतहीन दौड़ है। छाया मत छूना मन उपन्यास की कंचन, डाक बंगला की ईरा, प्रश्न और मरीचिका की रूपा आंटी, पृष्ठ संख्या 51, पतझड़ की आवाजें की उषा, नावे की मालती, दो लड़कियां की रंजना आदि नारियां उक्त कारणों से स्वैच्छिक यौन शोषण को स्वीकार करती हैं।